नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण 1 जून से शुरू हो रहा है, जो 15 जुलाई तक चलेगा। पहली से 15 जून तक लोग स्वगणना के जरिए ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी भर सकेंगे। जनगणना के सफल कार्यान्वयन को लेकर आज जनगणना कार्यालय निदेशालय शिमला में एक बैठक हुई, जिसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन, सीबीसी और पत्र सूचना ब्यूरो के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान जनगणना को लेकर लोगों को जागरूक करने को लेकर रणनीति बनाई गई। जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक दीप शिखा शर्मा ने बताया कि 16 जून से 15 जुलाई तक मकानों की गणना और सूचीकरण कार्य किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों से जनगणना कार्य में सहयोग की अपील की है।
हिमाचल प्रदेश में जो जनगणना 2027 उसका प्रथम चरण जो कि मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण है, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर कंडक्ट हो रहा है। और इस बार हमारा जो सेंसस है वो डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है। इसके लिए जनगणना में स्वगणना का जो प्रावधान है उसे भी रखा गया है। जो हमारे हिमाचल प्रदेश के नागरिक हैं वो स्वगणना पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी 1 जून से 15 जून के भीतर उसको दर्ज कर सकते हैं। प्लीज आप स्वगणना पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज करें। जनगणना की जानकारी जो है वो कॉन्फिडेंशियल है। यदि कोई स्वगणना के विकल्प को भी नहीं चुनता है तो भी जो हमारा प्रगणक है वो हर जगह जाएगा, हर कोने में जाएगा, प्रदेश के हर एक घर को जो है वो कवर किया जाएगा।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की महत्वाकांक्षी पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत शुरू किए गए युवा संगम कार्यक्रम के तहत हिमाचल और पुडुचेरी के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान की एक अनूठी पहल चलाई जा रही है। इसी सिलसिले में एनआईटी पुडुचेरी के 48 छात्रों और फैकल्टी समन्वयकों का एक दल केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला पहुंचा है। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम से देश की एकता व अखंडता को मजबूती मिलेगी और इसके माध्यम से युवाओं को देश के सभी राज्यों की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिल रहा है।
मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम रहते हैं वो देश की एकता और अखंडता को उसको मजबूत बनाते हैं। पुडुचेरी से जो छात्र आए हैं एनआईटी के माध्यम से, वो इस कार्यक्रम के दौरान पूरे हिमाचल को जानेंगे, यहाँ की सभ्यता संस्कृति, यहाँ का जो देवत्व है उसको अभी जानेंगे। प्रधानमंत्री जी की ये जो पहल है ये निश्चय ही भारत को मजबूत करने में एक नया मील पत्थर साबित है। विविधता में एकता, ये भारत की खूबसूरती है। उसी के आधार पर भारत हजारों वर्षों से दुनिया में एक अलग तरह से है।
सांसद सुरेश कश्यप ने डीएपी और एनपीके खाद पर दी जा रही 50 रुपये प्रति बोरी सब्सिडी बंद करने पर राज्य सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के इस निर्णय से एक बार फिर साबित हो गया है कि उसे किसानों, बागवानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कोई चिंता नहीं है। सुरेश कश्यप ने इस कदम को किसानों के साथ विश्वासघात करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 9 लाख से अधिक किसान परिवार खेती व बागवानी से जुड़े हैं और खाद पर सब्सिडी बंद करने से उन पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। सुरेश कश्यप ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और वित्तीय कुप्रबंधन और गलत नीतियों के कारण सरकार प्रदेश को भारी कर्ज में धकेल चुकी है। ई फार्मेसी के विरोध में दवा विक्रेताओं के राष्ट्रव्यापी बंद के आह्वान का आज प्रदेश में भी असर देखने को मिला। सोलन जिले की लगभग 1500 दवा दुकानें आज पूरी तरह बंद रहीं। दवा व्यापारियों ने सरकार से ऑनलाइन दवा की खरीद पर रोक लगाने की मांग की है। सोलन जिला केमिस्ट एसोसिएशन के सह सचिव विपुल शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन दवा खरीद से दवा व्यापारियों का व्यापार खत्म हो रहा है और लोगों को नकली दवाएं ही मिल रही हैं। इस दौरान एसोसिएशन ने उपायुक्त के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन भी सौंपा।
हमारे इस बंद में सभी प्रकार की दवाई की दुकानें, सभी प्रकार की होलसेल की एजेंसियां सभी आज पूर्ण रूप से बंद है। हमारी स्ट्राइक 19 तारीख रात 12 बजे से 20 तारीख रात 12 बजे तक जारी रहेगी। ई फार्मेसी जो है वो ऑनलाइन दवाइयों का जो व्यापार है उसके विरोध में हमने काफी टाइम से सरकार से हमारी बातचीत चल रही थी, मगर वो कोई अभी तक संज्ञान नहीं निकला। और दूसरा हमारा है जो हमारी स्पूरियस मेडिसिन भी ऑनलाइन फार्मेसी से आती है, नकली दवाएं जो ऑनलाइन में मिलती है उसका भी विरोध हम करते हैं।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार। भारत के बांध, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति और समग्र जल सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दशकों से बांधों ने देशभर में कृषि विकास, औद्योगिक विकास और सामाजिक आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे जैसे बड़ी संख्या में बांध पुराने पड़ जाते हैं और जलवायु परिवर्तनशीलता बढ़ती है, उनके पुनर्वास, परिचालन, सुरक्षा और दीर्घकालिक सुदृढ़ता का मुद्दा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत सरकार संरचनात्मक पुनर्वास, संस्थागत सुधारों, डिजिटल निगरानी प्रणालियों और जोखिम आधारित सुरक्षा प्रबंधन के संयोजन के माध्यम से इस मुद्दे पर काम करती है। भारत आज विश्व स्तर पर सबसे बड़े बांध श्रेणियों में से एक का प्रबंधन करता है। ये 6628 निर्दिष्ट बांधों के साथ दुनिया में तीसरे स्थान पर है, जिनमें से 6545 चालू हैं और 83 बांध निर्माणाधीन हैं। इन बांधों की सकल जल भंडारण क्षमता लगभग 330 अरब क्यूबिक मीटर है। वे राष्ट्रीय खाद्य ऊर्जा और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन बांधों में से लगभग 26% 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं। इसमें 291 वैसे बांध शामिल हैं जो 100 साल से भी अधिक पुराने हैं। लगभग 42% बांध 25 से 50 वर्ष पुराने हैं। भारत का सबसे पुराना बांध तमिलनाडु में कलनई लगभग 2000 वर्षों से काम कर रहा है, जो स्थायी इंजीनियरिंग और रखरखाव का मिसाल है। इनमें से लगभग 98.5% यानी 6448 बांध हैं जो राज्य सरकारों के स्वामित्व में हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 49 बांध या 0.7% हैं। निजी संस्थाओं के पास 0.6% या 36 बांध हैं और केंद्र सरकार के पास 0.2% या 12 बांध हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक निर्दिष्ट बांध हैं, इसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक और ओडिशा का स्थान आता है। पुराने बुनियादी ढांचे, अवसादन, बदलते हाइड्रोलॉजिकल पैटर्न और बढ़ती जलवायु परिवर्तनशीलता को देखते हुए व्यवस्थित पुनर्वास और सुरक्षा प्रबंधन की आवश्यकता है। भारत में 439 जलाशयों के विश्लेषण से पता चलता है कि औसतन 42 वर्ष पुराने जलाशय के साथ सकल भंडारण क्षमता का औसतन 19% नुकसान होता है। भंडारण की औसत वार्षिक हानि 0.74% अनुमानित है, जो प्रतिवर्ष लगभग 1.81 MCM प्रति जलाशय के बराबर है। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना जैसी प्रमुख पहल को संरचनात्मक मरम्मत, स्पिलवे और गेटों के आधुनिकीकरण और उन्नत निगरानी प्रणालियों की स्थापना के माध्यम से मौजूदा बांधों की सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन में सुधार करने के लिए 3 चरणों में कार्यान्वित किया जा रहा है। DRIP विश्व स्तर पर सबसे बड़े बांध पुनर्वास कार्यक्रमों में से एक है, जो बांध सुरक्षा प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित और जोखिम आधारित दृष्टिकोण की ओर भारत के बदलाव को दर्शाता है। बांध पुनर्वास व सुधार कार्यक्रम चरण एक को विश्व बैंक की मदद से अप्रैल 2012 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में 7 राज्यों, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड के 223 बांधों को शामिल किया गया। इस कार्यक्रम ने इसमें शामिल राज्यों और एजेंसियों में बांध सुरक्षा प्रथाओं और संस्थागत क्षमता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें 144 बांधों के पुनर्वास कार्यों के साथ 223 बांधों के लिए बाढ़ की समीक्षा की डिजाइन, बांध स्वास्थ्य निरीक्षण और पुनर्वास प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया और 223 बांधों के लिए इसका कार्यान्वयन पूरा किया गया है। ये कार्यक्रम केंद्रित था जिसमें बांध संरचनाओं का पुनर्वास और आधुनिकीकरण, बांध सुरक्षा निरीक्षण और मूल्यांकन, आपातकालीन कार्य योजनाओं का विकास, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम, बांध स्वास्थ्य और पुनर्वास निगरानी अनुप्रयोग का परिचय शामिल है। बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम चरण 2 और 3 अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ। सामयिक चर्चा समाप्त हुई। नमस्कार।